एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक कह सकते हैं अधूरी किताब के बिखरे हुए पन्नों में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी किताब जिसने सदियों से मतलब दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और हम जैसे आम इंसानों को भी झकझोरा है। यह है 17वीं सदी के असाधारण फ्रांसीसी विचारक ब्लेज पास्कल के पांव से, यानी विचार।
और ये विचार देखिए आज भी उतने ही तीखे और प्रासंगिक हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। पास्कल ने आस्था, तर्क और इंसान होने का मतलब क्या है, इन बड़े सवालों से सीधी टक्कर ली। जरा सोचिए, आज जब विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है और कई लोग धर्म पर सवाल उठाते हैं, तब भी पास्कल के उठाए मुद्दे हमें क्यों बेचैन करते हैं? शायद इसलिए कि वो उस गहरे विरोधाभास को पकड़ते हैं जो हम सबके अंदर है, कि इंसान एक ही वक्त में लाजवाब भी है और बेहद कमजोर और दुखी भी।
कमाल का विरोधाभास है ये। तो चलिए पहले उस शख्स से मिलते हैं जिसके दिमाग में ये गहरे ख्याल आए, ब्लेज पास्कल। कोई साधारण दार्शनिक नहीं थे वो, है ना?
बिल्कुल नहीं, वो 17वीं सदी के जीनियस थे, गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, आविष्कारक और फिर बाद में हाँ धर्मशास्त्री भी बने।
सुना है बचपन से ही कमाल के थे।
अरे हाँ, कहते हैं 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद ही यूक्लिड की ज्यामिति के सिद्धांत खोज निकाले थे बिना किसी किताब के,
अरे वाह।
और 19 साल की उम्र तक दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन बना लिया था। उन्होंने संभाव्यता सिद्धांत मतलब प्रोबेबिलिटी थ्योरी, उसकी नींव रखी, द्रवों के दबाव को लेकर पास्कल का नियम दिया जिससे हाइड्रोलिक प्रेस जैसी चीजें बनी। मतलब उनका दिमाग एकदम वैज्ञानिक की तरह तेज और तर्कशील था।
तो फिर एक वैज्ञानिक का मन दर्शन और धर्म की तरफ कैसे मुड़ गया? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता?
यही तो पास्कल की कहानी का दिलचस्प मोड़ है। 1654 में उनके साथ एक बहुत गहरा जीवन बदलने वाला आध्यात्मिक अनुभव हुआ जिसे वो खुद अग्नि की रात या नाइट ऑफ फायर कहते थे। इस अनुभव ने उन्हें हिलाकर रख दिया और उनका ध्यान विज्ञान की बाहरी दुनिया से हटकर इंसान की आंतरिक स्थिति, आस्था और ईश्वर की ओर चला गया। वो कैथोलिक धर्म की एक शाखा जैनसिनिज्म से भी प्रभावित हुए, जो इंसान की कमजोरी, मूल पाप और ईश्वर की कृपा की जरूरत पर बहुत जोर देती थी।
यानी उनके पास विज्ञान की तर्क शक्ति भी थी और आस्था की गहरी समझ भी। ये तो बड़ा ही अनोखा मेल है।
सही कहा, और यही मेल उन्हें खास बनाता है। वो तर्क की ताकत को जानते थे क्योंकि उन्होंने खुद उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन वो उसकी सीमाओं को भी समझते थे, खासकर जब जिंदगी के सबसे बड़े सवालों की बात आती थी, जैसे मौत, दुख, ईश्वर का होना या ना होना। इसीलिए वो उन लोगों से भी बात कर सकते थे जो सिर्फ तर्क पर भरोसा करते थे, मतलब संशयवादी, और उनसे भी जो आस्था रखते थे। वो दोनों की भाषा जानते थे।
अच्छा, अब आते हैं पांसे पर। आपने शुरू में कहा कि ये कोई पूरी किताब नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये दरअसल पास्कल के नोट्स हैं। वो ईसाई धर्म के पक्ष में एक बहुत बड़ी विस्तृत किताब लिखना चाहते थे। शायद नाम होता ईसाई धर्म की पैरवी। लेकिन इसे पूरा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। पांसे वही बिखरे हुए नोट्स, विचार और सूत्र हैं, लेकिन इन टुकड़ों में एक अजीब सी ताकत है, एक कच्चापन, एक ईमानदारी जो शायद पूरी सजी सवरी किताब में नहीं होती।
और ये किताब किन लोगों के लिए लिखी जा रही थी, मतलब कौन थे उनके टारगेट ऑडियंस?
उनका निशाना थे उनके जमाने के पढ़े लिखे दुनियादार लोग, जिन्हें लिबर्टीन कहा जाता था। ये वो लोग थे जो पारंपरिक धर्म से कह सकते हैं ऊब चुके थे, थोड़े संशयवादी थे और इंसान की तर्क क्षमता पर बहुत भरोसा करते थे। उन्हें लगता था कि वे अपने दम पर जिंदगी को समझ सकते हैं, ईश्वर की जरूरत नहीं, कुछ हद तक आज के सेक्युलर या नास्तिक लोगों की तरह। तो पास्कल इन तर्कवादी लोगों को कैसे समझाते हैं? क्या वो सीधे ईश्वर के होने के सबूत देने लगते हैं जैसे बाकी धर्मगुरु करते हैं?
यही पास्कल का तरीका अलग है। वो बहस की शुरुआत ईश्वर से नहीं करते, वो शुरू करते हैं हमसे, इंसान से। वो इंसान की हालत का एक बेरहम लेकिन सच्चा आईना दिखाते हैं। पहला कदम, हमारे घमंड को तोड़ना। वो दिखाते हैं कि हम कितने बेचैन, कितने अधूरे, कितने दुखी हैं। मौत का डर, अज्ञानता, मन की चंचलता, चीजों की निरर्थकता, इन सब से हम घिरे हैं।
और फिर वो बताते हैं कि हम इस सच्चाई से कैसे भागते हैं।
बिल्कुल, वो बताते हैं कि कैसे हम लगातार खुद को बहलाने, ध्यान भटकाने में लगे रहते हैं, जिसे वो डिवर्टिसमेंट कहते हैं, काम, मनोरंजन, रिश्ते, महत्वाकांक्षा, कुछ भी, ताकि हमें जिंदगी के खालीपन और मौत की हकीकत का सामना न करना पड़े। फिर वो दिखाते हैं कि दर्शन जैसे सांसारिक समाधान भी क्यों ना काफी है, तर्क की अपनी सीमाएं हैं। इसके बाद वो अपना मशहूर पास्कल का दाव पेश करते हैं, जो तर्क के जरिए ही आस्था की तरफ एक पुल बनाने की कोशिश है, और अंत में वो दिल या अंतर्ज्ञान की बात करते हैं और ईसाई धर्म को इंसान के गहरे विरोधाभासों का एकमात्र हल बताते हैं।
ये तो पूरी यात्रा लगती है, खुद की सच्चाई से रूबरू होने से लेकर किसी समाधान तक पहुंचने की। चलिए इस यात्रा के अलग अलग पड़ावों को थोड़ा और समझते हैं। पहला पड़ाव, ईश्वर के बिना इंसान की दुखद हालत।
हाँ, पास्कल यहाँ इंसान के अंदर के गहरे विरोधाभास पर उंगली रखते हैं कि हम महान भी हैं और दयनीय भी। उनका एक बहुत मशहूर रूपक है सोचने वाला सरकंडा, यानी थिंकिंग रीड। वो कहते हैं कि इंसान शारीरिक रूप से प्रकृति की सबसे कमजोर चीज है, एक सरकंडे जैसा, जिसे हवा का एक झोंका या पानी की एक बूंद भी खत्म कर सकती है।
लेकिन फिर महान कैसे हुआ? सरकंडा तो कमजोर होता है।
महान इसलिए कि वो सोचता है। हमारी महानता हमारी चेतना में है। हम अपनी कमजोरी, अपनी मौत को जानते हैं। पास्कल कहते हैं, अगर पूरा ब्रह्मांड मिलकर हमें कुचल भी दे, तो भी हम उस ब्रह्मांड से ज्यादा महान होंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि हम मर रहे हैं, जबकि ब्रह्मांड को कुछ नहीं पता होगा। हम अपनी हालत पर सोच सकते हैं।
पर क्या यही सोच, यही चेतना हमारे दुख का कारण भी नहीं है कि हम जानते हैं कि हम मरने वाले हैं, हम अधूरे हैं?
बिल्कुल, यही चेतना हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराती है। हमारे अंदर अनंत की, सच्चाई की, पूर्णता की एक प्यास है, लेकिन हमारी हकीकत क्या है? सीमित ज्ञान, सीमित ताकत और मौत। इसी खाई के एहसास से दुख पैदा होता है। हम तारीफ चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, खुद को महत्वपूर्ण महसूस करना चाहते हैं। पास्कल कहते हैं, ये सब उस अंदरूनी खालीपन को भरने की नाकाम कोशिशें हैं। उनका मकसद पाठक को ये महसूस कराना है कि सांसारिक चीजें हमें सच्ची शांति नहीं दे सकती और ईश्वर के बिना हम अधूरे हैं।
अच्छा, जब इंसान को अपनी इस हालत का अंदाजा होता है तो वो समाधान खोजता है। आपने कहा कि पास्कल दर्शन जैसे समाधानों को भी अधूरा मानते हैं, क्यों? क्या कमी है उनमें?
वो मुख्य रूप से अपने समय के दो लोकप्रिय दर्शनों, स्टोइकवाद और संदेहवाद की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि स्टोइकवाद, जो इंसान की तर्क शक्ति और आत्मनियंत्रण पर जोर देता है, वो इंसान की महानता तो देखता है, पर उसकी भीतरी कमजोरी, भ्रष्टाचार और पाप की अनदेखी करता है। इससे झूठा घमंड पैदा होता है। दूसरी तरफ संदेहवाद इंसान की कमजोरी और अज्ञानता को तो पहचानता है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं देता, बस निराशा की ओर ले जाता है। पास्कल का मानना था कि ये दोनों दर्शन इंसान की पहेली का सिर्फ एक हिस्सा पकड़ते हैं, पूरी सच्चाई नहीं, जो कि विरोधाभासी है।
और इन दर्शनों से भी ज्यादा आम तरीका जो हम सब अपनाते हैं वो है ध्यान भटकाना, ये डिवर्टिसमेंट। ये क्या बला है, थोड़ा और बताइए इसके बारे में।
ये पास्कल की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक खोजों में से एक है। उनका मशहूर कथन है, इंसानों की सारी मुसीबतें इस बात से पैदा होती हैं कि वे एक कमरे में अकेले चुपचाप नहीं बैठ सकते।
जरा सोचिए, हम क्यों हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं? शोर, भीड़, काम, पार्टी, गेम, सोशल मीडिया, क्यों?
पास्कल कहते हैं, इसलिए नहीं कि इन चीजों में सच्चा सुख है, बल्कि इसलिए कि ये हमें खुद से, अपने अंदर के खालीपन से और जिंदगी के मुश्किल सवालों, मौत, अकेलापन, जीवन का अर्थ से भागने में मदद करती हैं।
बाप रे, ये तो ऐसा हुआ जैसे हम खुद को ही बेहोशी की दवा दे रहे हों, ताकि असलियत का दर्द महसूस ना हो।
बिल्कुल, यही एक तरह की अस्तित्वगत बेहोशी। हम खुद को व्यस्त रखते हैं ताकि हमें सोचना ना पड़े। शिकार, जुआ, लड़ाई, राजाओं के दरबार की भागदौड़, पास्कल के जमाने में ये तरीके थे। आज
हमारे पास नेटफ्लिक्स है, इंस्टाग्राम है, 2400 घंटे की खबरें हैं, काम का अंतहीन बोझ है, लिस्ट लंबी है।
हाँ, ये सब आधुनिक डिवर्टिसमेंट है। हम बाहरी उत्तेजनाओं के इतने आदि हो गए हैं कि अंदर की शांति हमें डरावनी लगती है।
अगर दर्शन और ये ध्यान भटकाने वाले तरीके दोनों ही नाकाफी हैं, तो पास्कल आगे क्या रास्ता दिखाते हैं? शायद यही उनका मशहूर दाव आता है, पास्कल्स वेजर।
हाँ, पैस्कल का दाव यानी पैस्कल्स वेजर, ये उन लोगों के लिए है जो ईश्वर के होने या न होने को लेकर कंफ्यूज्ड है, अनिश्चित है। ध्यान दीजिए, ये ईश्वर के अस्तित्व का कोई तार्किक सबूत नहीं है। ये नहीं कह रहा कि इसलिए ईश्वर है। ये अनिश्चितता की हालत में एक व्यवहारिक फायदे नुकसान वाला तर्क है। पास्कल कहते हैं, तर्क यह तय नहीं कर सकता कि ईश्वर है या नहीं, तो हमें एक दाव लगाना पड़ेगा, एक शर्त लगानी पड़ेगी। हमारी जिंदगी खुद एक दाव है।
तो ये दाव कैसे काम करता है, क्या शर्तें हैं?
पास्कल कहते हैं, आपके पास दो मुख्य विकल्प हैं। पहला, आप ईश्वर के होने पर दाव लगाते हैं, यानी आप मानते हैं कि ईश्वर है और उसी हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप सही निकले, ईश्वर सच में है, तो आपको अनंत सुख मिलेगा, आपका फायदा अनंत है। और अगर आप गलत निकले, ईश्वर नहीं है, तो आपने क्या खोया? कुछ दुनियावी सुख जिन्हें पास्कल पहले ही खोखला बता चुके हैं। आपका नुकसान सीमित है, फाइनाइट।
ठीक है, और दूसरा विकल्प?
दूसरा, आप ईश्वर के न होने पर दाव लगाते हैं, यानी आप नहीं मानते। अगर आप सही निकले, ईश्वर नहीं है, तो आपको कुछ खास नहीं मिला, कम से कम स्थायी मूल्य का तो कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप गलत निकले और ईश्वर है, तो आपने सब कुछ खो दिया, अनंत सुख गवा दिया और शायद अनंत दुख मोल ले लिया। आपका नुकसान अनंत है।
तो गणित के हिसाब से देखें, मतलब प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो अनंत फायदे की संभावना और अनंत नुकसान के खतरे को देखते हुए ईश्वर पर दाव लगाना ही समझदारी है, लॉजिकल लगता है। लेकिन क्या ये थोड़ा स्वार्थी या हिसाब किताब वाला नजरिया नहीं लगता आस्था के लिए? कुछ लोग इसे कह सकते हैं कि ये तो सिर्फ डर या लालच से प्रेरित है, सच्ची आस्था नहीं है।
हाँ, ये एक बहुत जायज सवाल है और पास्कल भी इसे समझते थे। उनका मकसद ये नहीं था कि इस दाव से आपको फौरन सच्ची आस्था मिल जाएगी। नहीं, ये दाव तो सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। ये तर्क आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ईश्वर हो सकता है, तो उसके हिसाब से जीना शुरू करना क्यों ना समझदारी हो। पास्कल की सलाह थी, अपनी इच्छाओं को काबू में रखो, धार्मिक लोगों की संगति करो, प्रार्थना और पूजा पाठ जैसे काम करो, मतलब एक्ट एज इफ यू बिलीव। उनका मानना था कि हमारे कर्म और आदतें धीरे धीरे हमारे दिल और दिमाग को बदल सकती हैं और हमें सच्ची आस्था और ईश्वर की कृपा पाने के लायक बना सकती हैं। ये दरवाजे पर दस्तक देने जैसा है।
दिलचस्प है, यानी तर्क हमें एक सीमा तक ले जाता है और फिर पास्कल कहते हैं कि आगे का रास्ता दिल से तय होता है। ये दिल क्या है उनके लिए?
बिल्कुल, अगले हिस्से में पास्कल ज्ञान पाने के एक और तरीके की बात करते हैं, अंतर्ज्ञान, जिसे वो मशहूर तौर पर दिल, लिखौर कहते हैं। उनका अमर वाक्य है, दिल के अपने तर्क होते हैं जिन्हें तर्क बिल्कुल नहीं जानता। लिखौर आसे गिजों क्यों लगेजों न कने पॉइंट। वो दो तरह की सोच में फर्क करते हैं। एक है लेस्प्री द ज्योमेट्री, यानी ज्यामितीय या तार्किक दिमाग, जो कदम दर कदम विश्लेषण और सबूतों से काम करता है, जैसे गणित में। दूसरा है लेस्प्री द फिनेस, यानी सहज या सूक्ष्म दिमाग, जो जटिल बारीक सच्चाइयों को एक झटके में समग्र रूप से समझ लेता है।
इसे थोड़ा और समझाएंगे, ये सूक्ष्म दिमाग कैसे काम करता है, कोई उदाहरण
लगा लेते हैं या किसी कविता का गहरा मतलब समझ जाते हैं। ये सब सूक्ष्म दिमाग का काम है। ये तर्क वितर्क से नहीं होता, ये एक तरह की सीधी पकड़ होती है, इंट्यूशन। पास्कल कहते हैं कि जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाइयां, खासकर ईश्वर का एहसास, इसी सूक्ष्म दिमाग या दिल से होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आस्था अतार्किक है, बल्कि ये कि वो तार्किक दिमाग की पहुंच से परे के ज्ञान का एक रूप है। जैसे हम प्यार, दोस्ती या सुंदरता को साबित नहीं करते, महसूस करते हैं।
अच्छा, समझ गया। और इसी कड़ी में वो छिपे हुए ईश्वर या डेओस एब्सकॉन्डिटस की बात भी करते हैं कि ईश्वर अगर है तो साफ साफ दिखता क्यों नहीं, ये सवाल तो उठता है।
हाँ, और ये एक बहुत आम सवाल है। पास्कल का जवाब है कि ईश्वर जानबूझकर थोड़ा छिपा हुआ है। अगर ईश्वर का होना सूरज की तरह साफ होता, तो हम सबके पास मानने के सिवा कोई चारा न होता। तब आस्था जबरदस्ती की होती, उसमें हमारी मर्जी या चुनाव का कोई मतलब न रह जाता। ईश्वर के होने के संकेत तो हैं, लेकिन इतने नहीं कि शक की कोई गुंजाइश ही न बचे। पास्कल का एक और मशहूर कथन है, जो खोजना चाहते हैं उनके लिए काफी रोशनी है और जो आंखें बंद रखना चाहते हैं उनके लिए काफी अंधेरा है। ये हमारे दिल की इच्छा की परीक्षा है कि हम रोशनी की तरफ मुड़ते हैं या अंधेरे में ही रहना पसंद करते हैं।
ठीक है, तो अब पाठक ने अपनी हालत समझ ली, दुनियावी समाधानों की कमी देख ली, दांव के तर्क पर गौर कर लिया और दिल की आवाज सुनने को तैयार है। अब पास्कल ईसाई धर्म को कैसे पेश करते हैं?
हाँ, अब जब पाठक आस्था की संभावना के लिए थोड़ा खुल गया है, पास्कल तर्क देते हैं कि सिर्फ ईसाई धर्म ही उस गहरे मानवीय विरोधाभास का सही सही निदान भी करता है और समाधान भी देता है। वही विरोधाभास जिसे उन्होंने शुरू में उजागर किया था, महानता और दीनता। यह हमारी महानता को समझाता है क्योंकि ईसाई मान्यता के अनुसार हम ईश्वर के स्वरूप में बने हैं, और हमारी दैन्यता या कमजोरी को भी समझाता है पतन और मूल पाप की धारणा के जरिए।
और क्या वे इसके लिए कुछ सबूत या संकेत भी देते हैं, मतलब सिर्फ फिलॉसफी नहीं?
हाँ, वो कुछ बातों को संकेत या निशानी मानते हैं जो खोजने वाले दिल के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हालांकि इन्हें आज के वैज्ञानिक सबूतों जैसा नहीं समझना चाहिए। इनमें शामिल हैं, पहला, भविष्यवाणियां, पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी बातें जिनके बारे में पास्कल का तर्क था कि वे ईसा मसीह के जीवन में पूरी हुई। दूसरा, चमत्कार, ईसा मसीह के चमत्कार जिन्हें वे ईश्वर के अधिकार का सबूत मानते थे। तीसरा, यहूदी लोगों का टिके रहना, सदियों तक जुल्म सहने के बावजूद उनका एक समुदाय के रूप में बने रहना जो ईसाई कहानी के लिए अहम था। और चौथा, ईसा मसीह का व्यक्तित्व। पास्कल के लिए ईसा मसीह का चरित्र खुद ही सबसे बड़ा प्रमाण था, एक ही व्यक्ति में ईश्वर और इंसान, ताकत और विनम्रता, न्याय और दया का संगम, जो मानवीय विरोधाभास का आदर्श समाधान था।
यानी उनका मकसद यह दिखाना था कि ईसाई धर्म सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से तसल्ली नहीं देता, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी भरोसेमंद है। ये उस ताले की चाबी है जो इंसान की उलझी हुई हालत है।
बिल्कुल। तो अगर हम पास्कल के इन विचारों के सार को समेटना चाहें तो कुछ मुख्य बातें उभर कर आती हैं। पहली, इंसान के स्वभाव का विरोधाभास। हम एक ही साथ महान और दयनीय है, और इस पहेली को समझना जरूरी है। दूसरा, तर्क के सीमाएं। तर्क बहुत काम का है, पर जिंदगी के सबसे गहरे सवालों का जवाब सिर्फ तर्क से नहीं मिलता, हमें दिल या अंतर्ज्ञान की भी जरूरत है।
तीसरा, ध्यान भटकाने का जाल, डाइवर्टिसमेंट। हम अक्सर खुद से और जिंदगी की मुश्किल सच्चाइयों से भागने के लिए खुद को फालतू की चीजों में उलझाए रखते हैं।
चौथा, दिल के अपने तर्क। ज्ञान का एक और तरीका है जो तर्क से परे है और अक्सर ज्यादा महत्वपूर्ण है।
और पांचवा, पास्कल का दाव। ये अनिश्चितता में फैसला लेने का एक तरीका सिखाता है, खासकर जब बात जिंदगी के सबसे बड़े दाव की हो, यानी आस्था की।
और ये बातें आज भी कितनी सच लगती हैं। हम सब अपनी ताकतों और कमजोरियों के बीच झूलते रहते हैं। हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं कि सिर्फ लॉजिक से काम नहीं चलता, खासकर रिश्तों या बड़े फैसलों में दिल की भी सुननी पड़ती है।
सही कहा। भारत में भी हम देखते हैं कि कैसे जिंदगी की भागदौड़ में लोग शायद ही कभी रुककर अपने अंदर झांक पाते हैं। हर कोई व्यस्त है, पर किस लिए? ये डिवर्टिसमेंट वाला पॉइंट तो बहुत रिलेटेबल है। और जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है, करियर का, शादी का, तो हम दिमाग की सुने या दिल की, ये कश्मकश तो हमेशा रहती है। पास्कल के विचार हमें इन जानी पहचानी स्थितियों को एक नई गहरी नजर से देखने में मदद करते हैं।
हाँ, और पोंसे ऐसी गहरी यादगार पंक्तियों से भरी पड़ी हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं।
हाँ, जैसे वो सबसे मशहूर पंक्ति, दिल के अपने तर्क होते हैं जिन्हें तर्क बिल्कुल नहीं जानता। ये याद दिलाता है कि समझ सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल और अनुभव से भी आती है। जिंदगी सिर्फ हिसाब किताब नहीं है।
और वो इंसान की हस्ती पर, इंसान प्रकृति में बस एक सरकंडा है, सबसे कमजोर, लेकिन वह एक सोचने वाला सरकंडा है। कितनी खूबसूरती से हमारी नाजुक हालत और हमारी गरिमा दोनों को एक साथ दिखाया गया है। हमारी असली ताकत हमारे विचारों में है।
और वो चुपती हुई बात, इंसानों की सारी मुसीबतें इस बात से पैदा होती हैं कि वे एक कमरे में अकेले चुपचाप नहीं बैठ सकते। ये ध्यान भटकाने वाले सिद्धांत का निचोड़ है। हम खुद से भागते हैं और इसी भागदौड़ में और उलझते जाते हैं। आज के जमाने में तो ये और भी सच लगता है।
बिल्कुल। और ईश्वर के छिपे होने पर जो खोजना चाहते हैं उनके लिए काफी रोशनी है, और जो आंखें बंद रखना चाहते हैं उनके लिए काफी अंधेरा है। ये बताता है कि विश्वास एक चुनाव है, एक झुकाव है। सबूत कभी इतने जबरदस्त नहीं होंगे कि हमारी मर्जी खत्म हो जाए।
तो इन गहरे विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल हो सकता है? क्या कुछ व्यवहारिक सबक हैं जो हम ले सकते हैं?
जरूर है। पहला तो अनिश्चितता में बेहतर फैसले लेना। पास्कल का दाव वाला तर्क हमें सिखाता है कि जब हमें पूरी जानकारी न हो, जो जिंदगी में अक्सर होता है, तब भी हम सोच समझकर फैसले कैसे ले सकते हैं। हमें संभावित फायदे और नुकसान का अंदाजा लगाना चाहिए, खासकर जब नतीजे बड़े हों। ये सिर्फ धर्म पर ही नहीं, करियर, निवेश, रिश्तों पर भी लागू होता है। रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस।
हाँ, ये तो है। दूसरा, अपने ध्यान भटकाने वाले पैटर्न को पहचानना और तोड़ना। पास्कल की डिवर्टिजमेंट की बात हमें सचेत करती है, कहीं हम भी तो सोशल मीडिया, ओटीटी या काम में डूबकर जरूरी सवालों से बच तो नहीं रहे। ये हमें रुककर सोचने, शांत रहने और खुद से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। शायद दिन में बस 10-15 मिनट शांति से बैठना भी एक शुरुआत हो सकती है।
ये हमें अहंकार से बचाता है और ज्ञान के दूसरे रूपों जैसे अंतर्ज्ञान, अनुभव, कला, भावनाओं का सम्मान करना सिखाता है। ये मानना कि मैं सब कुछ नहीं जानता असल में समझदारी की निशानी है।
चौथा,
तर्क और अंतर्ज्ञान में संतुलन बनाना। जिंदगी में कामयाब होने के लिए अक्सर दोनों की जरूरत होती है। हमें तथ्यों और विश्लेषण, तर्क के साथ साथ अपनी भीतरी आवाज, अनुभव और दूसरों की भावनाएं, अंतर्ज्ञान दिल पर भी ध्यान देना सीखना होगा।
और अंत में जिंदगी के विरोधाभासों को गले लगाना। पास्कल हमें दिखाते हैं कि इंसान होना ही विरोधाभासी होना है। हम मजबूत भी हैं और कमजोर भी, उम्मीद से भरे भी और डरे हुए भी। इन विरोधाभासों से लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार करना हमें ज्यादा सच्चा और शांत बना सकता है। इट्स ओके टू बी बोथ।
मेरे लिए पास्कल की सबसे बड़ी देन यह है कि वह हमें इंसान होने की पूरी सच्चाई, हमारी ऊंचाई और हमारी गहराई, हमारी शान और हमारी तकलीफ का सामना करने पर मजबूर करते हैं। वे हमसे पूछते हैं कि क्या हम सचमुच अपने आप में पूरे हैं या हमें अपने से बड़ी किसी चीज की जरूरत है, और वे हमें ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछने की चुनौती देते हैं। मैं अपनी जिंदगी में किन चीजों से भाग रहा हूँ, वो मेरा डिवोटिसमेंट क्या है।
और मेरे लिए पास्कल की खूबी उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और गहरी मनोवैज्ञानिक समझ का मेल है। वो दिखाते हैं कि तर्क की सीमाओं को मानना कमजोरी नहीं बल्कि एक अलग तरह की ताकत है, क्योंकि ये हमें समझ के दूसरे दरवाजे खोलने की इजाज़त देता है। वो याद दिलाते हैं कि जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब शायद सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि जीने, महसूस करने और विश्वास करने का जोखिम उठाने से मिलते हैं। श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक दिलचस्प सवाल हो सकता है कि उनके अपने जीवन में दिमाग और दिल के बीच का ये संतुलन कैसा है, कहाँ वो तर्क का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ दिल की सुनते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।